चूंकि आज की रात शबे जुमा भी है और माह मुहर्रम की पहली शबे जुमा है, जिसे इंडियन पाकिस्तानी कल्चर में नौचंदी कहा जाता है, तो ज़्यादा मुनासिब यह है कि आगाज़ मजलिस में हम अपने तमाम मरहूमीन को और ख़ास तौर पर उन मरहूमीन को जो पिछले साल तक शायद इस सफ़े अज़ा पे थे और आज वादी उस्सलाम से हमें और आपको देख कर इस मजलिस में शरीक हो रहे हैं, इन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المصدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج کی مجلس، جیسا کہ میں نے خطبے سے پہلے بھی یاد دلا دیا تھا کہ شب جمعہ کی مجلس ہے، اور ہر شب جمعہ، چاہے وہ سال کی کوئی عام تاریخ ہو، ایام عزا ہوں، پہلا عشرہ ہو، عشرہ زینبیہ ہو، ماہ مبارک رمضان میں مولا کی شہادت کی راتیں ہوں، شب جمعہ کے حوالے سے تین ذمہ داریاں اسلام ہمیں دیتا ہے. سولر سسٹم سے جو کیلنڈر بنا ہے اس میں 52 شب جمعہ ہوتی ہیں، اسلامی کیلنڈر میں تقریباً 48 یا 49، اور کبھی میں بہت ڈیٹیل میں تینوں باتیں بتاتا ہوں، اور کبھی اگر میرا سبجیکٹ بہت زیادہ آلریڈی لمبا ہو چکا ہوتا تو بہت ہی مختصر، مگر ایز اے ریمائنڈر اپنے مجمع تک یہ تین اہم ترین میسیجز منتقل کرتا ہوں. نمبر ایک، شب جمعہ، ایوری شب جمعہ زمانے کے امام کو اسپیشلی یاد کرنے کی رات. ویسے کون مومن ایسا جو ویک میں کبھی بھی کسی منٹ کسی سیکنڈ اپنے امام کو یاد نہ کرے، لیکن شب جمعہ اسپیشلی الگ سے. اور پھر یہ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات. گھر کے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پورا سال زندگی کے ہر منٹ میں موت کو یاد رکھتا، लेकिन शबे जुमा मौत को ज्यादा याद करना, और मौत से मतलब है अपनी मौत भी और जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनको भी, जो आज हमने आगाज मजलिस में इसीलिए सूरह फातिहा पढ़ा। और तीसरा यह है कि हर शबे जुमा दुआ की रात है, दुआ मोमिन को हर वक्त करना है, हर सेकंड करना है, लेकिन शबे जुमा दुआ की अहमियत बढ़ जाती है। यह आज की मजलिस का पूरा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अब ये तीन बातों में से जो सबसे पहली बात है जमाने का इमाम, वो चूंकि अभी तक जो प्लानिंग मेरे जहन में है उसके एतबार से कल यानी टुमारो वहां की मजलिस में ये बात डिटेल से आने वाली है पहले से ही, तो शबे जुमा के बदले में मैं इस मौजू को एक दिन डिले कर दूंगा, कल फ्राइडे का दिन। आपको मालूम होगा कि जहूर इमाम, अपियरेंस ऑफ इमाम जमाना कब है, ये आपको मालूम होगा कि आइदर फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वेडनेसडे को इमाम आ जाए और मंडे को इमाम आ जाए, लेकिन रिवायतों में ज्यादा या फ्राइडे का जिक्र है या सैटरडे का भी है, क्योंकि फ्राइडे को जमाने के इमाम की एक जियारत पढ़ने का वैसे ही हमको हुक्म है, रिकमेंडेशन है, और वो अलग से कोई स्पेशल हुक्म नहीं है। वीक के सात दिन 14 मासूमीन के लिए इस्लाम ने रख दिए, का सैटरडे रसूल खुदा का दिन है तो सैटरडे को रसूल खुदा की जियारत पढ़ो, और संडे मसलन मौलाए कायनात का और शहजादी कौन है, तो वो जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस्लाम ने उसमें फ्राइडे जमाने के इमाम के लिए। मगर उसी जियारत में जुमला आता है अल मुतवक्का फी ज़हूरक, मौला एक्सपेक्टेड है कि आज आप जाहिर होंगे एवरी फ्राइडे। बाद जगह तो मस्जिदों में नमाज जुमा या नमाज जोहर के बाद ये जियारत पढ़ाई जाती, और बाद जगह जो मोमिनीन की एक हैबिट होती, जैसे हमारे यहाँ कराची में खारदर का इलाका है वहाँ पे जरी है मसलन, बहुत सारे मोमिनीन की हैबिट है कि रोजाना सुबह को काम पर जाने से पहले वहाँ जाके सलाम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मोमिनीन की हैबिट है कि रोजाना फजर की नमाज के बाद उस दिन जिस मासूम की जियारत पहले वो जियारत पढ़ते हैं, जियारत मीन सलाम, अस्सलाम वालेकुम, मौला आपको सलाम, तो वो फ्राइडे को सुबह फजर के बाद अपने घर में जियारत पढ़ लेते हैं, बाज़ जगह मस्जिदों में होती है। लेकिन वो फ्राइडे की जियारत तो इसलिए है कि वीक का ये दिन जमाने के इमाम का है, मगर क्या कंफर्म है कि इमाम फ्राइडे को आएंगे? कंफर्म तो खैर कोई दिन नहीं, किसी दिन भी इमाम आ सकते, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन फ्राइडे की है और फिर सैटरडे। अच्छा, उसी जियारत में एक लफ्ज और है, शबे जुमा जमाने के इमाम को याद करना है, जो आज हमारा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, मगर ये दो मिनट की बात आ गई है तो सुन लीजिए। वो जियारत बहुत शॉर्ट जियारत है, उसके अंदर दो चीजें बहुत अहम मैसेज है। नंबर एक, इमाम का जहूर, कि कंफर्म ना समझो कि आशूरे के दिन ही होगा और फ्राइडे को होगा, ये अल्लाह जिस वक्त चाहे चेंज कर सकता। एक बात, ये खुद बहुत अहम बात मैंने कह दी है, लेकिन इस वक्त इसको एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, और मजमा जितना खामोश बैठा है तो लग रहा है कि जरूरत भी नहीं है। आप पहले से यह बात जानते हैं क्योंकि मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं। इस जियारत में एक तो ये मैसेज, इस जियारत में एक और मैसेज भी, लेकिन बहुत ही वो हिडन अंडर द लाइन इस अंदाज से कि तवज्जो नहीं होती है, कि जिसमें हम इमाम जमाना को सलाम करते हैं जियारत में और इमाम की औलाद को। अब ये हमारे यहां कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें इमाम जमाना के बेटे और इमाम जमाना के पोते और इमाम जमाना की बीवियां, लेकिन वो अकीदे का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक सिलसिला है। तो बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि ये आपने कहाँ से पढ़ दिया कि इमाम के एक बेटे हाशिम है, एक बेटे कासिम है, एक बेटे अब्दुल रहमान है, वो चार पांच नाम है, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो यही वाली जियारत जो एवरी फ्राइडे को आप पढ़ते हैं, और अगर कल भी पढ़ेंगे तो जियारत पे जरा सा अटेंशन दीजिएगा। अरबी में जियारत है, अरबी तो आपको इतनी नहीं आती, लेकिन लफ्ज आ जाएगा। अहले बैत का आले का इस अंदाज का लफ्ज कि मौला आप पर और आपकी औलाद पर सलाम, तो इमाम की औलाद इस ज़ियारत में मेंशन की गई। तो ये तो थोड़ी सी बात इसलिए हो गई कि इमाम ज़माना का जिक्र अपने सब्जेक्ट में रहते हुए अलग से नहीं, कल रात को मुझे करना है जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम सैटरडे नाइट शब है सैटरडे। अब ये तो समझाने का वक्त नहीं है, तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। ज़हूर इमाम या फ्राइडे है या सैटरडे, कल की रात भी इमाम की रात है, वैसे तो हर रात इमाम की रात है, ये एक बात हुई। और यहीं पर रुक कर एक बात मैं अपने आज के सब्जेक्ट के से मुतालिक बता दूं, लेकिन अभी वक्त है तो अभी बता दूं, आज की रात दुआ की रात भी, और दुआ के हवाले से इस्लाम का एक बहुत अहम मैसेज। असल में मुझे जो हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा था यतीम का माल और माल हराम, उसके हवाले से बात करना थी आज कि आज दुआ की रात, दुआ कबूल ही नहीं होती अगर आपके पेट में एक लुकमा भी हराम का हो। अब मजीद डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन दुआ के हवाले से आज मुझे इस एंगल से बात करना थी जो है बहुत मशहूर, मगर मीराज के हवाले से जो हराम होता उसका जिक्र हो रहा था, तो वो थोड़ी देर बाद बात शुरू होगी। लेकिन जब इमाम ज़माना की ज़ियारत का तस्किरा हो गया तो एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं। दुआ के हवाले से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब वो ये है जो मेरे सामने रखी है, मफातीहुल जिनान। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नहीं है बल्कि मोस्ट पॉपुलर किताब है। ठीक है, अहमदाबाद में या जमालपुर ताजपुर में मजमुआ ज्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि वो गुजराती लैंग्वेज में है, लेकिन ओवरऑल मफातीहुल जिनान इतनी पॉपुलर है कि हर मोमिन के घर में कुरान के साथ जो किताब होगी वो मफाती होगी। आम मोमिन नहीं, आम मोमिन के घर में भी, मुश्तहिदीन के घर में भी, मराजे के घर में भी, मासूमीन के रोजे नजफ और करबला में जाके देखी, जितने कुरान वहां पे नजर आएंगे उतनी ही मफाती बल्कि शायद उससे ज्यादा। अब मैं मफाती पर मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि ये वो किताब है जिस पर हमारे यहां जैसे आप हजरात, आपसे मेरी मुराद है जो मेरी मजलिस सुनते हैं यानी एजेड लोग, तो आपके यहाँ मजमुआ जितना इम्पोर्टेंट है इराक में, ईरान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी हर जगह साल के आमाल हों, आम दुआएं हों, जियारत पे अगर हम जा रहे हों मक्के मदीने के लिए जा रहे हैं ये किताब साथ में होती। मगर इस किताब में बस ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस, मैसेज बड़े लेकिन वो इतना शॉर्ट में बताए गए हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते। आज हमने मफाती उठाई, दुआए कुमैल पढ़ना है तो खाली दुआए कुमैल का पेज उठा ली, पूरी मफाती कभी कोई नहीं पढ़ता है ना शायद टाइम हो। देखिए जरा, अगर मैं अपने हाथ में उठा लूँ तो शायद मेरा हाथ भी इस बुढ़ापे में इतनी हैवी किताब को बर्दाश्त ना कर सके। तो आजकल आप स्मार्टफोन के जरिए से मफाती यूज करते हैं। एक हदीस इसके बिल्कुल आखिर में आई, और ये दुआ का बहुत अहम फार्मूला, रिस्क हराम से दुआ रुक जाती है हर मोमिन जानता है क्योंकि आजकल बहुत पढ़ा जा रहा, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर दुआ को रोकने वाला। आज की रात दुआ की रात है, मैं पूरी मजलिस इस पे नहीं पढ़ रहा हूं, चंद जुमले दुआ के लिए, दुआ कबूल होने के लिए। वाय हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? एक तो यह है कि हर दुआ के साथ पेशेंस चाहिए। अगर कभी कोई आपके सामने आके कहता है कि ये दुआ मैं बताता हूं, ये दुआ पढ़ो दो घंटे में तुम्हारा मसाला हल हो जाएगा, वो झूठ बोल रहा है। या वो कि दुआ की अहमियत बताने के लिए जरा सा वो बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा। दुआ के साथ सब्र बहुत जरूरी, मगर समटाइम्स ये दुआ जो डिले होती है वो हमारा कोई फॉल्ट या मिस्टेक होती, और उनमें से एक क्या, ये नमाज के लिए भी उसूल है और ये दुआ के लिए भी। नमाज हो के दुआ आपका फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबी नमाज पढ़ रहे हैं और आपका जहन यहां से वहां जा रहा, नमाज वैलिड है, गलत नहीं है, कबूल नहीं, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। नमाज सही होना और गलत होना अलग लफ्ज, और नमाज कबूल होना अलग लफ्ज। आप गीबत करके नमाज पढ़ेंगे आपकी नमाज ठीक है, क्योंकि नमाज गलत होती है खाने से, पीने से, हंसने से, बोलने से। लेकिन नमाज से पहले गीबत की, नमाज के बाद गीबत की। आपकी नमाज सही तो है, उसको रिपीट नहीं करना, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं, वो अल्लाह ने कबूल नहीं किए। ये आयतुल्लाह सिस्तानी इस्लामिक लॉ में नमाज के मसाइल से पहले का जो एक पैराग्राफ है वो पढ़ लीजिए। खैर, अब मैं बात को बहुत फैलाना नहीं चाहता, आज की रात में जो बहुत अहम अहम मैसेजेस देना है। तो बाज़ औक़ात मौलाए मुत्तकियान अपने मानने वालों को ये नसीहत करते हैं, नमाजें शॉर्ट करो, वाजिबात वाजिबात तो करना है लेकिन नमाजें शॉर्ट करो, ताकि तुम्हारा फोकस नमाज में ज्यादा बढ़े। जितनी ज्यादा लंबी नमाज होगी आदमी का फोकस हटेगा। अब अली जैसा नमाजी तो कोई नहीं है कि पांव से तीर खींचो और पता ना चले। हम और आप आम ह्यूमन बीइंग हैं, इसीलिए सुन्नत नमाज को ज्यादा से ज्यादा लेंथी करने के लिए सूरे हैं और दुआएं हैं, वाजिबात नहीं। वाजिब मुख्तसर नमाज रहे। इमाम जमात के लिए कितना सख्ती से हुक्म है, शॉर्ट नमाज पढ़ाओ ताकि हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके और उसमें उसका फोकस भी नमाज पर रहे। जमात में फोकस हटने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पढ़ रहा है इमाम, आप सुन रहे हैं, तो चुनाच जहन हट जाता है। माज इब्ने जबल को पैगंबर ने यमन का गवर्नर बना के भेजा, और जब वो 6 महीने के बाद मदीने वापिस आए तो पैगंबर ने रिपोर्ट ली। तो अब उस रिपोर्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, लेकिन बहुत लंबा वाकया, ये हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री सुनने का लोगों को शौक भी नहीं है, और मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो बहुत डिटेल में चला जाता हूं। रिपोर्ट ली, 6 महीने तुम गवर्नर रहे, वहां क्या रहा। माज ने कुछ लोगों की कंप्लेन की कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके आपकी तरफ से अपॉइंटेड गवर्नर, और मैं वहां जमात नमाज पढ़ाता था, ये लोग नहीं आते थे जमात। पैगंबर ने उन लोगों को बुलवाया, कहा या रसूल अल्लाह, हम खाली आदमी नहीं, हम मसलन काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, महाज को जब नमाज शुरू कराते हैं तो इतनी लंबी नमाज हो जाती। पैगंबर ने कहा, महाज तुम लोगों को छुरी से जबा कर रहे, तुम्हारा एक्शन लोगों को नमाज से हटा रहा। बहुत लंबी नमाज पढ़ना है, घर में खुद पढ़ो, लेकिन जमात नमाज के अंदर उतनी शॉर्ट नमाज पढ़ाओ जो हर एक के लिए काबिले बर्दाश्त हो। तो अब बहुत सारी इसमें बातें निकल आती हैं। यही उसूल दुआ के लिए भी, वो लंबी लंबी दुआएं अगर आप पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी तस्बीह पढ़ रहे हैं, आजकल हमारे यहां कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए, आप बैठे रहेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा, आज के दिन ये तस्बीह पढ़े, आज के दिन ये दुआ पढ़े, और इतने लंबे लंबे वो पैगाम होते हैं। अब मुसल्ले पे बैठ गए। मौला ने यही मफाती, ये नाम मफाती का मैंने लिया क्यों था, इस रिवायत की वजह, यही मफाती, इतनी मोटी किताब, मैंने जुमला भी ऐसा कहा जरा सी मफाती की बुराई हो गई, कितनी हैवी किताब, लंबी लंबी दुआएं। इसके आखिर में एक हदीस, मौला ने मस्जिद कूफा में एक सहाबी बहुत लंबी दुआ करते सुना, फौरन रोक दिया, कहा कि दो अल्लाह नहीं, जो अल्लाह तुम्हारी ये लंबी दुआ सुन रहा है वही तुम्हारी शॉर्ट दुआ सुनता है, रोजाना की दुआएं शॉर्ट किया करो। हाँ, एक दिन शबे जुमा बैठे, दुआए कुमैल को भी लेंदी माना गया है, शबे कदर में पूरी रात चलो, अराफा के मैदान में दौरान है पूरा दिन चलो, लेकिन रोजाना की तो ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। कहा मौला, तो शॉर्ट दुआ कैसी होगी, कहा बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़म्बिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्ले खैरिन व अऊज़ु बिल्लाह मिन कुल्ले शर। खत्म बात, दुनिया का हर प्रॉब्लम आ गए, सारी तारीफें अल्लाह की, अल्लाह की तारीफ तो जरूरी है दुआ से पहले, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़म्ब, में हर गुनाह की तौबा करता हूं। यही जुमला शॉर्ट रोजाना पढ़ना, शबे जुमा दुआए कुमैल में इसको फैला दिया, अल्लाहुम्म अग़फिर लिय ज़ुनूब। अब ये फिर 7-8-9 जुमले इससे निकले, डेराइव हुए, लेकिन रोजाना ये नहीं पढ़े जाते, रोजाना सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़म्ब। दुआ कबूल नहीं होती गुनाह की वजह से, तो हर दुआ से पहले तौबा करो। अस्अलुल्लाह मिन कुल्ले खैर, ऐ खुदा मैं तुझसे हर अच्छी चीज मांगता हूँ। खत्म बात, बीमारी हो के सेहत हो के जॉब हो के औलाद हो के शादी हो के पीस ऑफ माइंड हो के वीजा हो के जो कुछ हो, सब आ गया एक लम्जे खैर में। वह आऊज बिल्लाह मिन कुल्ले शर, हर खराबी से तेरी पनाह चाहता हूं, सारे प्रॉब्लम्स امام نے کہا یہ دعا روز پڑھا کرو. لمبی دعا کا شوق ہے ہفتے میں ایک دن، اور لمبی دعا ہے سال میں ایک رات شب قدر، اور لمبی دعا ہے حج کا زندگی میں ایک دن عرفہ. شب جمعہ ایوری ویک، شب قدر ایوری ایئر، عرفات کا میدان لائف میں ایک دفعہ. لیکن روزانہ لمبی لمبی دعائیں نہیں، لمبی دعائیں تمہارا کنسنٹریشن دعا سے ہٹا دے، قبول ہوتی ہوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. توجہ یا فوکسنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے لمبے لمبے عربی جملے پڑھنے سے. اور وہ امام کا واقعہ یاد کیجئے کہ ایک مومن نے اصول کافی کی والیوم 2 میں پورا واقعہ ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، میں ہٹا جا رہا ہوں تو مجھے خود بہت پریشانی ہے، میں واپس ساتھ آنے کے لیے صرف سمری بھی نہیں، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں. مرتضیٰ مطہری کی کتاب داستان راستان سچوں کی کہانیاں، وہ موجود ہے نیٹ پر بھی، وہاں دیکھ لیجئے گا کہ ایک مومن ایک نان مسلم کو تبلیغ کر کے مسلمان بنایا، لیکن ایک دم سے اس پر اتنا برڈن ڈال دیا، یہ دعا بھی پڑھو، یہ وظیفہ بھی پڑھو، یہ تسبیح بھی پڑھو، واجب نمازیں اپنی جگہ، یہ نماز شب بھی پڑھو. اگلی صبح کوئی اس نے کہا کہ میں نے تو یہ اسلام چھوڑ دیا. اسلام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جاب لیس ہو، جو بیکار ہو، جو خالی ہو، جو ریٹائر ہو، جن کو کرنے کا کوئی کام نہیں. یہ امام نے پوری اسٹوری نقل کی اور کہا دیکھو ایک نان بلیور کو مسلمان بنایا کتنی بڑی عبادت، اور ایک مسلمان کو کافر بنایا اس سے بڑا گناہ. تو یہ جو کہ ہمارے یہاں ایک گروپ، سب نہیں، باقی لوگوں کو تو واجبات کروانا مشکل ہوتا، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا برڈن ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے مذہبی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں لیڈیز کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی. تمہاری ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا بھی، شوہر کی خدمت بھی، مستحب نماز، سنت روزہ، سنت دعائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ فریڈم کا پرابلم نہیں ہے، ایک ڈیوٹی تمہاری ہے، اس میں رکاوٹ نہ پڑے. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ نماز کے نام پہ 2 گھنٹے اگر آپ وہاں پہ اس سے کہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس انسان کے اوپر. تو خیر اب یہ باتیں تو بیچ میں آ گئی. تو روزانہ کی زیارتیں آپ دیکھیں گے بہت شارٹ ہے، مولا کو سلام کر رہے ہیں، مولا کو، شہزادی کو سلام کر رہے ہیں، شہزادی یا کون ہے ان کو. جتنی لمبی بھی زیارت ہوگی دل خوش ہوتا رہے گا کہ شہزادی سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، 2 جملے جو ہمارے بزرگوں کا پہلے سے طریقہ تھا، ہر نماز کے بعد السلام علیک یا باب اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک و علی اولادک و رحمۃ اللہ و برکاتہ. اب اگر روز نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھائی جائے، یا روز نماز کے بعد زیارت جامعہ، بور ہو جائیں گے آپ. لفظ بہت برا ہے لیکن ہیومن نیچر کے مطابق. تو اسی لیے یہ حکم ہے اسلام کا کہ روز آنا کے لیے ہر چیز شارٹ کرو. اور پھر شب جمعہ، اب شب جمعہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ دعا کبھی رول. اور اس کے اندر 2-3 باتیں ایسی آ گئیں جتنا ابھی میں نے بیان کیا، کہ اب میں کل کے ایک جملے کو پہلے ایکسپلین کروں اور پھر آج کے اصل سبجیکٹ پر آ جاؤں. ابھی میں نے کہا کہ مثلا لائف میں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے عرفات، اور ماہ مبارک رمضان میں تقریباً تمام علماء جو آخری تاریخ آتی ہے لاسٹ نائٹ آف رمضان، جس میں واقعا معرفت رکھنے والے روتے ہیں، السلام علیک یا شہر اللہ، اے اللہ کے مہینے الوداعی سلام، سلام معد، ایسا سلام کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہے. رمضان کو ہم سلام کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ. امام کی حدیث پڑھی جاتی ہے، امام نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی اس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں سوائے ایک، اگر وہ حج میں عرفات کے میدان میں پہنچ گیا. عرفات کا میدان اور عرفات کا دن، ڈے آف عرفہ، شب قدر سے زیادہ افضل ہے. جو شب قدر میں دعا قبول نہیں ہوتی وہ وہاں قبول ہو جاتی، جو شب قدر میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا ہے وہ عرفات کے میدان میں مغفرت کروا لیتا. جو لوگ حج پر گئے ہیں، عرفات کا میدان دیکھا ہے، سفید احرام پہنے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان پہ رونا اور گڑگڑاہٹ، ایک عجیب ماحول بنتا عرفات حج. مگر حج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی کہ حج ہر ایک کے لیے ضروری نہیں. اگر اللہ نے آپ کی استطاعت اور حیثیت دی ہے तो आप पर हज वाजिब, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार वाजिब होता, और वो अपनी मर्जी से नहीं कि आपका दिल चाह रहा है कि मैं हज करूं, तो आप हज करके आ जाएं, वो इजाजत है, लेकिन वो सुन्नत हज बनेगा। वो ऐसा ही हज होगा जैसे एक नाबालिग बच्ची अगर रोजा रख रही, जैसे एक नाबालिग लड़का अगर नमाजें पढ़ रहा, ये वाजिबात में काउंट नहीं होंगे। वाजिब हज की कुछ कंडीशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मुश्तहदीन के दरमियान इख्तिलाफ है कर्जे के मसले में कि अगर किसी पे कर्जा हो तो क्या उसको ये इजाजत है कि वो वाजिब हज करे। हज की परमिशन है मगर यह हज उसका सुन्नत हज कहलाएगा, यानी बाद में जब कर्जे अदा हो जाएंगे उसको दोबारा हज पे जाना होगा। अब मुझे यहां का नहीं पता कि नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, पाकिस्तान में एक तरीका लोगों ने शुरू किया है कि हज तो जवानी में करें तो ज्यादा मजा भी आता है और बहुत आराम से हो जाता, तो बहुत सारे लोग शादी हुई फौरन हज पे चले गए। यह भी आगाज़ जवानी है, इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से कोशिश करके हज कर लिया कि एक बार वाजिब हज हो जाए। तो अब यह कि जिंदगी में अल्लाह देगा दोबारा जाएंगे दोबारा, लेकिन एक टेंशन खत्म हो जाएगा, वाजिब हज हम कर चुके। बट अगर किसी के ऊपर लोन है तो क्या वो ये नियत के साथ हज कर सकता है? अब आइए, सिर्फ क्योंकि टाइम नहीं और मैं मसाइल मेंबर से बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मसाइल का तो मसला यह है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मसला निकलेगा। एक घंटा क्या एक वीक भी इसके लिए नाकाफी है। सिर्फ बहुत ही मुख्तसर दो बातें अर्ज करके असल मौजू पे आता हूं। पहली बात, कर्जा अगर हो तो आप वाजिब हज नहीं कर सकते, चाहे वो ऐसा कर्जा हो जो आप बड़े आराम से अदा कर सकते हैं, जैसे मॉर्गेज होता। आयतुल्लाह सिस्तानी की हज की किताब, देखिए जो किताब मर्जी की होती है जिस पर उसके किताब पर साइन और स्टैंप होता, वो पूरा एक एक वर्ड मर्जी ने खुद पढ़ा होता, सबसे ऑथेंटिक वही चीज। अनलेस ये के कोई मसला ही मर्जी का चेंज हो जाए बाद में रिसर्च करके। मनासिक हज अरबी किताब है, मसला नंबर 34+47, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हज रिचुअल्स, वही रूलिंग 34 एंड रूलिंग 47। वहां जाके आप देख लीजिए, जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल वाज़े। सिर्फ जरा सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें हो सकती है, उसको वाज़े कर, और वो ये है कि इस मसले में लिखा है कि अगर किसी पे कर्जा हो, चाहे ये कर्जा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम आराम से इसको अदा कर रहा, जिस आदमी ने कर्जा दिया उसने भी फुल परमिशन दी, जाओ मैं इजाजत देता हूं जाके हज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, फिर भी आपका हज हो जाएगा, वाजिब नहीं होगा, मुस्ताहब हज होगा। फिर आगे एक लफ्ज आया है जिसकी वजह से कल किसी खातून ने, औरत ने, लेडी ने एक सवाल किया, उसमें लिखा है अनलेस ये के कर्जे के रीपेमेंट का पीरियड इतना दूर हो। अब ये जुमला मैं किताब से पढ़ रहा हूं, आकाश सिस्तानी की एक्चुअल किताब, ओरिजिनल किताब जो खुद समझिए उन्होंने लिखी कि पीरियड इतना दूर हो रीपेमेंट का जस्ट लाइक 50 ईयर, तो फिर आप उस कर्जे को छोड़ दें और हज पे चले जाए वाजिब हज। अब यहां मैंने मेंबर से कुछ और कहा, जहन में कुछ और उनके आगे, कि भाई लिखा है 50 साल, तो अब 50 साल तो नहीं लेकिन 25 साल 30 साल के मॉर्गेजेस तो आम चीज नहीं। उन्होंने कहा रीपेमेंट, यानी आपने कर्जा लिया 50 साल बाद आपको उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना, तब तो ठीक है आप वाजिब हज कर, लेकिन अगर आपने कर्जा लिया वो 50 साल में पेमेंट होगा लेकिन इंस्टॉलमेंट अभी शुरू हो गई, वो नहीं, उसमें आप वाजिब हज नहीं कर सकते। ये किताब में मेंशन ही नहीं है, मेंशन है जिसका रीपेमेंट 50 साल बाद शुरू होने वाला। तो ऐसा तो नॉर्मल या यूजुअल नहीं होता, लेकिन अगर होता तो वो आदमी हज कर सकता है जिसने लोन आज लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसको देना है वो आज से 50 साल बाद देगा। अब यहां पर एक बात मुझे किसी ने कही और ये वो बात है जिसका मुझसे ताल्लुक नहीं, मैं आपको सिर्फ मसाला बता रहा हूं कि कर्जा हो तो आप हज कर सकते हैं और कीजिए और बरकतें लीजिए, लेकिन वो वाजिब हज नहीं। बाद में जब कभी ये कर्जा खत्म हो जाएगा आपको फिर हज पे जाना पड़ेगा, चाहे आप बूढ़े हो गए हो या बीमार। वो तो हज हम कर चुके, 10 हज कर चुके, 10 के आप 50 हज कर ले, लेकिन वो वाजिब कंसीडर नहीं हुए। लेकिन किसी ने मुझे बताया, मौलाना मोहतरम ने बताया कि मसले का नॉर्थ अमेरिका से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहां जो आप बैंक से लेते हो वो लोन नहीं कहलाता, वो लोन नहीं। भाई तो ठीक है, अगर लोन नहीं है तो मैंने तो कोई बात नहीं कही थी कि अमेरिका का मसला या कनाडा का, मैंने कहा जिस पर लोन हो। अब अगर ये लोन नहीं है जो आप अपने मकान और बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो फिर ये मसले का आपसे ताल्लुक ही नहीं, और अगर ये लोन है तो इस मसले का आपसे ताल्लुक है, नंबर एक। नंबर दो, उससे भी शॉर्ट बात, या रसूल अल्लाह अगर हमें पता चले कि मौत का फरिश्ता, मौत, तीसरा आज का सब्जेक्ट क्या है, मौत, मौत पे आ रहा हूं, इमाम जमाना से मैं दुआ पे गया था, अब दुआ से फिर हज की दुआओं पे गया था, और अब उससे मौत पे आ रहा हूं, लेकिन मसला सुन ली हदीस, या रसूल अल्लाह अगर हमें पता चले मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने के लिए चल चुका, वो आने वाला है हमारे घर में किसी भी मिनट, वो वहां से चल चुका, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, हम चाहते हैं कोई ऐसी इबादत करके जाए कि मैक्सिमम सवाब लेके जाए, तो क्या इबादत करें? पैगंबर ने कहा वाजिबात के हलाल हराम के मसले सीखना शुरू कर दो। भाई ये किस काम आएंगे? तो अभी तो मलकुल मौत आ रहा, तो अभी तो कब्र में जाओगे, कब्र में कौन से वाजिबात हलाल और हराम के मसले? कहा कि नहीं, जितनी नॉलेज लेके जाओगे उतना अजाब है कब्र में तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। अगर मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे लग गया और अभी अभी तुम्हें वो पकड़ने वाला है, जितना टाइम मिले हलाल और हराम के मसले, मफातिहुल जिना, शब कदर के अमाल में जाके देखिएगा, 21 रमजान के अमाल में शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि बुजुर्ग उलमा ये कहते हैं कि आज की रात यानी 21 शब कदर अफजल तरीन अमल कुरान का अमल है जो सर पे रखते हैं, या 2 रकत नमाज है जो 7 मरतबा कुलवल्ला के साथ पढ़ते हैं, अफजल तरीन अमल है मसाइले दीन पर डिस्कशन और उनको सीखना शब कदर। तो अब ये जो बात मैं कह रहा हूं शबे जुमा के अहम तरीन अमाल में से एक है, लेकिन टाइम अब ज्यादा नहीं लूंगा, मैं खुद परेशान हूं, मेरा सब्जेक्ट इतना बड़ा है। अब दूसरी बात सुनिए, पहली वाली बात जो मैंने कही, आगे सिस्तानी का फतवा था शुरू से, लोगों के नॉलेज में नहीं था वो अलग चीज, जबकि किताब में बहुत क्लियर मेंशन है 34। अच्छा, अब किसी ने कहा कि भाई कर्जा है हम पर, मॉर्गेज है, नॉर्थ अमेरिका का मॉर्गेज भी लोन है, उसने कहा, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, तो अब मैं वाजिब हज तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं वाजिब हज करूं, तो मसला 47 में उसका तरीका बताया गया कि अगर आप पर हज वाजिब न हो और आप फिर भी वाजिब हज करना चाहें, कर्जे की वजह से नहीं और भी किसी वजह से, हज वाजिब नहीं और आप चाहते मेरा हज वाजिब हो जाए, तो एक तरीका है जो पेज जो मसला 47 रूलिंग नंबर 47 में है, बाकी अब आप देख लीजिएगा, ये मजलिस है सवाल और जवाब का, सेमिनार या फोरम नहीं। नंबर 2 सुन लीजिए ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए, वो ये है कि दूसरा मसला यही कर्जे के हवाले से खुमस का आया। हाँ, इसके अंदर आगे सिस्तानी का मसला शुरू में ये नहीं था, उन्होंने इश्तिहाद करके अपना मसला चेंज किया, यानी इसमें अगर आपको किसी ने पहले कोई और मसला बताया तो वो ठीक था, वो आदमी गलत नहीं था, ये न्यू रूलिंग है, हज वाली रूलिंग न्यू नहीं है, हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये वाली न्यू रूलिंग चेंज, और इसका खुलासा ये है कि जिस पर कर्जा हो उसके ऊपर फिलहाल इस वक्त एट द मोमेंट कोई खुम्स वाजिब नहीं। मसलन आपने बिजनेस के लिए और मकान के लिए $1 मिलियन कर्जा लिया और इस साल आपने ½ मिलियन प्रॉफिट कमाया जो आपके पास कैश की सूरत में हैंड है, कोई खुम्स नहीं देना। बाज ऑर्गेनाइजेशन वाले और बाज इमामबाड़े वाले मुझसे कहते मौलाना ये मसला मत बताइए, खुम्स से ही तो हमारे खर्चे चलते हैं, आप जो मसला बताएंगे तो ये जो एक सोर्स ऑफ इनकम है ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन जो वाजिबात का मसला है, इस मसले की वजह से कई इमामबाड़े वालों ने मुझसे मजलिस का वादा लेके फिर कैंसिल कर दिया। पूछा था उन्होंने कि मौलाना ये मसला आप बताएंगे, मैंने कहा इंटेंशनली नहीं बताऊंगा, मजलिस के बीच में आ गया तो बता भी दूंगा, नहीं भाई भी मौलाना फिर आप नहीं आइएगा, हमारा तो साल भर का खर्चा खुम्स से निकलता। लेकिन ये न्यू रूलिंग है। पहले पहले आगे सिसानी ये नहीं कहते थे, कहते थे कर्जा अलग चीज, आपने मॉर्गेज लिया है, $1 मिलियन का मकान लिया है, लेकिन इस साल आपने ½ मिलियन अगर प्रॉफिट कमाया, इसका खुम्स अलग से दिए। अब कहते लेकिन ये इतना आसान नहीं, इसकी बहुत डिटेल। और मैं ये ऑनेस्टली ये बात कह दूं, मैं अकाउंट्स का आदमी नहीं, ये चीजें मेरी समझ में भी नहीं आती, ना ही मैंने कभी मॉर्गेज लिया, ना ही मैं इस पोजीशन में रहा हूं कि कोई बिजनेस करूं या मकान खरीदूं। तो जो किताब का मसला है वो मैंने आपको बताया, बट मसला है बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ अमेरिका में फिक्ह पर कमान रखने वाले उलमा में से एक बहुत ही अहम नाम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी साहब का, जो टोरंटो में बाथर्स में जो खोजा सेंटर है उसका नाम भी यही है, जाफरी सेंटर, वहां के रेसिडेंस आलिम और कई सालों से। असल में तो इनके वालिद से जो दारुसलाम में थे मौलाना सईद अख्तर साहब मरहूम अलैह मकामहू, तबलीग दीन का एक सिलसिला चला था। ये कहा जाता है कि शिया के पास बेस्ट तफसीर है तफसीर मीजान, बहुत ही वैसे ये एक तरह से मुश्किल तफसीर है इसको समझना, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है शुरू की वॉल्यूम्स का वही इन्हीं के वालिद ने किया, बहुत उनकी खिदमत। और उसके बाद जब ये नया मसला आया तो उन्होंने 90 मिनट्स के दो लेक्चर दिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से ऐसे क्राउड में उसको बताया जिसमें अकाउंटेंट्स भी बैठे थे, रियल इस्टेट वाले भी बैठे थे, और बहुत ही कमांड के साथ। वो लिंक आपको मिल जाएगा, इसलिए कि मैंने आपके प्रेसिडेंट रिजवान मोमिन साहब को लिंक भेजा कि आप जाके देख लीजिए, एक इंग्लिश में, फिर अकाउंटेंट अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी के साथ है, फिर पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के साथ है। उन्होंने भी उसको देखा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आपको लिंक भेज दें कल सुबह, ताकि आप उसको खुद देख लीजिएगा पूरा। अगर आप 3 घंटे का सेमिनार नहीं सुन सकते हैं तो उसका 15 मिनट का पोर्शन जो पार्ट 2 में मिनट नंबर 20 और सेकंड 40 मिनट 40 सेकंड के बाद शुरू हो रहा है ये न्यू रूलिंग ऑफ आयतुल्लाह सिस्तानी। खैर, वैसे ये मसला चला आयतुल्लाह मुनीर खब्बाज से, बहुत बड़ा नाम है ये इल्मी दुनिया में, आयतुल्लाह सिस्तानी के वन ऑफ द क्लोज स्टूडेंट, और जो आजकल इश्तिहाद की तालीम देते हैं वहां से चला, लेकिन वो अरबी में, वो आपके लिए एक तरह से बेकार है, तो ये आप जरूर देखिएगा। मैं खुद टाइम आपका नहीं ले रहा हूं, लेकिन वाजिबात का मसला तो आपको समझना भी है, जाके देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 90 मिनट के दो लेक्चर हैं, 3 घंटे में खुम्स के और बहुत सारे आम मसले भी, लेकिन अगर आपको उससे इंटरेस्ट नहीं है तो कम अज कम पार्ट 2 20 मिनट 40 सेकंड के बाद से एक थोड़ा सा क्लिप देख लीजिएगा। ये माले हलाल व हराम दुआ कबूलियत है, दुआ आमाल की कबूलियत और फिर हज, और इसी मंजिल पर आकर कुरान की वो आयत का तर्जुमा कर दूं जो तकरीबन आधी मजलिस का टाइम हो गया अब तक तिलावत तो शुरू में हो गई, हज की आयत। अगर हज आपका सही और हज सही होने की वन ऑफ द कंडीशन है खुमस आपने सही तरीके से पेमेंट किया हो, हज रिचुअल्स इंग्लिश में है आयतुल्लाह सिस्तानी की एक्चुअल बुक, उनके अपने कलम से, मसला नंबर 34 है लोन और हज, और 35 है खुमस और हज, जिसमें खुमस वाजिब है वो हज नहीं कर सकता अगर खुमस के पेमेंट करने से हज के पैसे कम हो जाएंगे। वो किताब आप जब देखेंगे 34 देखिएगा तो एक लाइन बाद 35 भी देख लीजिएगा। लेकिन खुद हज कुरान करीम उसके बेनिफिट बता रहा है उस आयत में जिसकी तिलावत मैंने अभी की, ये सूरह बकरा की आयत है, मैं अक्सर तिलावत करता रहता हूं और याद दिलाता रहता हूं कि ये आयत बच्चे बच्चे को याद है मगर यह हज की आयत। वमिन अन्नास मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहुम फिल आखिरत मिन खलाक, कुरान कह रहा है हज करने वालों में ऐसे लोग हैं। पूरी हज की आयतें कि अराफात से चलो मुजदलफा जाओ और मुजदलफा से चलो और मिना में आओ, और फिर ये आयत आई कि हज कर लिया। अब ऐसे लोग हैं हाजियों में जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में ये दे दे, अल्लाह देगा, लेकिन चूंकि उन्होंने आखिरत में कुछ नहीं मांगा तो वमा लहुम फिल आखिरत मिन खलाक, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिले। अल्लाह ने नहीं रोका, उन्होंने मांगा ही नहीं, लेकिन हाजी अल्लाह को इतना पसंद है कि इस मेंटेलिटी का भी हाजी जो हज करके भी आखिरत के लिए कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ दुनिया के लिए मांग रहा, उसकी भी हाजत अल्लाह पूरी कर रहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ने आपको एक च्वाइस दिया कि या दुनिया मांग लो या आखिरत मांग लो, तो आपने कहा भी तो दुनिया तो अभी अभी का मसला, ये मांग लो आखिरत बाद में देखेंगे, ऐसा भी नहीं। फिर अगली आयत में है वह मिन हो मैं यकुल, और ऐसे हाजी भी हैं, हाजी 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 मैं यकुल जो कहते हैं रब्बना आतेना फिर दुनिया हसना, खुदा बंदा दुनिया में भी सारी अच्छी चीजें दे, वह फिर आखिरत हसना आखिरत में भी सारी अच्छी चीजें दे, वह किना अजाब नारो जहन्नम के अजाब से बचा ले अल्लाह, उनकी ये दुआ भी कबूल करता। तो ये हाजी के लिए अल्लाह का वादा, दुनिया में जो मांगो वो भी मिलेगा, आखिरत में जो मांगो वो भी मिलेगा, और जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ मांगो तो वो भी मिलेगा। अब ये जहन्नम का अजाब कहां से आ गया जब दो चीजें आ गई, दुनिया और आखिरत, तो ये तीसरी चीज कहां से आ गई, इसको कहते हैं बरज़ख। और मोमिन के लिए रिवायतों में आज शबे जुमा मौत का मौजू है, ये मैं फिर याद दिला दूं कि आप एकदम से कहेंगे दो दिन मौलाना ठीक पढ़ते पढ़ते आज को बह गए, आज की रात ने मुझे अपने सब्जेक्ट में रखते हुए थोड़ा सा ट्रैक से हटा दिया। तीन चीजें आई हैं, दुनिया आखिरत और क़िना अज़ाब अन्नार। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं कि कैसे इससे बरज़ख है, लेकिन खुलासा ये दुनिया में भी अच्छी चीज मांगी, आखिरत में भी मांगी, और बरज़ख से अज़ाब से बचने की दुआ करें, क्योंकि एक इमाम दो इमाम चार इमाम छह इमाम नहीं, आठ इमामों की हदीस है कि हम आए हमारे शियो कयामत से इतना न डरना, लेकिन बरज़ख जो है जो मरने के बाद से कयामत तक का टाइम पीरियड है, यहां के अज़ाब से डरना। और फिर एक जुमला में हर साल कहता हूं, इस साल भी सुन ली, मौत के बाद और कयामत का दिन। अब हमारे वालिद का इंतकाल, हमारे दादा का इंतकाल, वो इस वक्त बरज़ख में मर चुके हैं, कयामत नहीं आई। ये भी ये वाला जो टाइम पीरियड, ये काफिर के लिए बड़ा अच्छा, ये काफिर बहुत ऐसे है आराम के साथ। अब यजीद और इब्ने मुल्जिम जैसों को छोड़िए, लेकिन एक नॉर्मल नॉन मुस्लिम की या नॉन शिया की बात है, नॉन शिया बहुत आराम से, इतने आराम से कि सूरह यासीन कुरान कह रहा है जब कयामत का दिन आएगा तो लोग क्या कहेंगे, मम्बा असना मिन मरकदेना, मरकद कहते बेडरूम, अरे किसने हमको बेडरूम में उठा दिया, कब्र उनके लिए बेडरूम है, इतने ठाट और आराम से सो रहे। और मोमिन के लिए यह जमाना बड़ा प्रॉब्लम का, कितना प्रॉब्लम का है, कितना प्रॉब्लम का है, कितना प्रॉब्लम का है, कि जो चीज अबू जहल भी मानता, क्या आप इंकार करेंगे, क्या चीज मानता है, पैगंबर की सच्चाई, पैगंबर की दुश्मनी अपनी जगह, मक्के के सारे काफिर कहते अंत सादिकुन अंत अमीनुन, तू सच्चा तो है और तू अमीन भी, पैगंबर की सच्चाई को सब मानते हैं और पैगंबर के अमीन होने को सब मानते हैं। शबे हिजरत मौला को अपने बिस्तर पे सुला के पैगंबर क्या कह के गए, ये अमानतें वापस लौटा देना काफिरों, कौन काफिर दिन भर पैगंबर की मुखालिफत करे लेकिन अमानत भी उन्हीं के पास रखवा, पता है कि वापिस मिलेगी अमानत तो यहीं से मिलेगी। अबू जहल के पास एक शख्स ने अमानत रखवाई थी, वो मर गया और उसका बेटा आया तो अबू जहल ने धक्के देके इस तरह निकाला कि वो सूरा नाजिल हुआ जो दो दिन से पढ़ रहा, और आयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, देखा इस अबू जहल को कैसे यतीम को धक्के देके भगा रहा, उसकी अपनी कौम का, उसकी अपने अकीदे का। और हालत यह है कि यही काफिर जो पैगंबर के जान के दुश्मन, अमानत भी यही रखवा रहे, क्या अबू जहल हमारा है लेकिन अमानत रखवाओगे खा जाएगा, और यहां पे अमानत मिलेगी, वो अल्लाह का रसूल सच्चाई को वो लोग भी मानते हैं, आप शक करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह मुझे अपने पास बुला रहा है मेराज की रात, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا, पाक है वो अल्लाह जो रातों रात अपने बंदे को यहां से वहां तक ले गया ताकि अपनी एक निशानी दिखाए, आयत यानी निशानी। अब मौला पुकार पुकार के कहते थे अना आयतुल्लाह अल-कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी तो मैं हूं जो शबे मेराज पैगंबर को दिखाई गई। हमारे महाराजे कितनी एहतियात करते हैं, हमारे यहां हौज़ा इल्मिया में जो एक सिस्टम है स्टूडेंट एंटर होता है सिकतुल इस्लाम कहलाता, फिर जरा सा जैसे आपका ग्रेजुएशन है यहां तक पढ़ा तो हुज्जतुल इस्लाम बना, और फिर इश्तिहाद तक पहुंच गया आयतुल्ला बना, और मर्जे हुआ तो आयतुल्ला उजमा कहलाया, कुबरा नहीं, क्योंकि आयतुल्ला कुबरा और उजमा माने दोनों के तकरीबन एक जैसे। आयतुल कुबरा मौला ने अपने लिए कहा जो अली का लकब है, हमारे अजीम तरीन मराजे भी घबरा जाते हैं कि वो मंजिल कितनी ऊंची। मौला ने कहा मेरी अजमत दिखाने के लिए अल्लाह पैगंबर को लेके गया आसमान पर, लेकिन अब मैं एक बहुत ही मामूली सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फिर आपको असल मैसेज तक पहुंचाऊंगा, और वो ये मेरे जानने वालों क्लोज रिलेटिव्स में, अच्छा पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको एक बहुत सारी जंक फूड की आदत हो जाती, आपके यहाँ भी है, प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट कानून बना रही है, ख़त्म कर रही है, और जो कानून गवर्नमेंट नहीं बना पाई वो जाफरी सेंटर ने बना दिए हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू है। पाकिस्तान के अंदर थ्रोट कैंसर बहुत ज़्यादा, और उसका मेन रीज़न बम्बई से आया है, गुटखा और पान मसाला और पान पत्ती और पता नहीं क्या कुछ। आप तो काफ़ी दूर है ना बम्बई से, अहमदाबाद करीब तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को भी शौक है छालियां खाने का, सुपारी खाने का या पान मसाला खाने का, और इसके नतीजे में थ्रोट कैंसर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, यानी जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ जिस कैंसर का है वो वाले कैंसर नहीं जो यहाँ पे बहुत कॉमन है, ये गले का कैंसर। और बच्चे 4, 6 साल, 7 साल, 8 साल समझाना भी उनको मुश्किल होता है कि इसकी खराबियां क्या, लेकिन मेरी अपनी फैमिली की बात मैं कर रहा हूं, कोई सपोज करके बात नहीं कर रहा, वाकान के वाकया, ये 3, 4, 5 छोटे बच्चे थे, समझा समझा के थक गए, बहुत शौक है उनको, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि इमीडिएट फैमिली में हमारे कुछ बड़ों को, एडल्ट को थ्रोट कैंसर हो गया, और कैंसर का जो प्रॉब्लम है, फिर जो तकलीफ होती है और जो पेन होता है, और वो स्टेज आता है कि पेन किलर भी बेकार हो जाता है, और वो आदमी का तड़पना, चीखना, चिल्लाना, और फिर पाकिस्तान का जो ट्रीटमेंट है उसको जहन में रख के बच्चे घबरा गए ये देखकर, ये दर्द, ये तकलीफ, ये उनकी हालत, ये परेशानी, और वो फैमिली मेंबर है, यानी मोहब्बत है बच्चों को उनसे, किसी की नानी है, किसी की दादी है, जो केस में बता रहा हूं, तो उनसे कह दिया कि बेटा ये देख रहे हैं ना, अगर तुमने इसी तरह ये सुपारी खाई और ये छालियां खाई तो आगे चल कर ये होगा, कुछ कहने की, कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं, अपनी आंख से वो मंजर देगा, छोड़ दिया बच्चों। एक एग्जांपल, अब आइए एक दूसरे एग्जांपल, वो ये है कि एक मरतबा अपनी फैमिली ही की बात कर रहा हूं, फैमिली में कुछ लोग, अल्लाह ने उनको हैसियत दी, बड़े शानदार उनके मकानात हैं, विला हैं, गाड़ियां हैं, हम जैसे लोग मेंबर पे आने वाले तो खाली तसव्वुर ही कर सकते हैं। हाँ, अगर शायद इंग्लिश में स्पीच करना शुरू कर दूं तो कुछ स्टेटस हाई हो जाता है, वरना बाकी उर्दू वाले का तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो अब यह है कि एक दफा दावत दी उन्होंने खुलूस के साथ, ये फैमिली वाले हैं, खाली मुझे दावत नहीं दी, कोई फंक्शन था फैमिली का, तो अब छोटे बेटे को लेके गया, वो चीजें वो देख रहा है जो उसने जिंदगी में कभी अपने घर में नहीं देखी। मुझे आज भी याद है कि मेरी अपनी फैमिली में आलिम दीन थे, नमाज जुमा पढ़ाते थे, लेकिन हर जुमे के दिन नमाज पढ़ाते हुए भूल जाते थे। लोगों ने कहा भाई एक दफा दो दफा, लेकिन ये हर दफा आप क्यों भूल जाते हैं सूरज जुमा? कहा जब मैं ये सोचता हूं कि नमाज पढ़ा के घर में जाऊंगा और मेरे बच्चों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और वो मुझसे पूछेंगे कि बाबा आप कुछ लाए, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? वो बच्चे मेरे जहन में आते हैं, ना सूरह जुमा याद रहता है ना नमाज याद रहती। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी हालत में रखा, और जो कुछ मेरे पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन कि जो अच्छी हालत में आपको रखा है, तो आप अपने पुराने शहर अहमदाबाद को भी याद रखते हैं, वहां की हेल्प भी हो रही है, वहां से कितनों को आप ला भी चुके हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते हैं ना। तो अब ये मैं अपनी फैमिली के, अच्छा इसमें अच्छे बुरे सब हैं, तो जब बेटे को लेके गया या बेटी को लेके गया, वो चीजें तो उसने जिंदगी में नहीं देखी, किसी के घर में स्विमिंग पूल भी होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये कंसेप्ट है, यहां से अच्छे मकान, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए वो गाड़ी उन्होंने भेजी थी, गाड़ी में बैठ के गए, इतना मजा आ रहा था बच्चों को, इतनी आराम से गाड़ी भी, आप तो हमें उस पर बिठा के ले जाते हैं जो पाकिस्तान में रक्षा कहलाता है। पता नहीं, मैंने बंबई में देखा तो थ्री व्हीलर कहते हैं शायद आप लोग उसको बंबई में, आप उसमें और कहां ये इतनी शानदार मर्सिडीज गाड़ी, और इसी तरह वहां घर में गए तो ड्राइंग रूम उनका, और उसके बाद फिर टीवी भी ऐसा, हमारे यहाँ तो टीवी ही नहीं था उस वक्त, और उसके बाद फर्नीचर सोफा हर चीज को बच्चा देख के इम्प्रेस हो रहा। और मैंने उसे यही कहा कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे, स्कूल की तालीम सीरियस हासिल करोगे, खेलकूद को जरा कम करोगे, क्योंकि इंडिया में तो आजकल क्रिकेट खेलने वालों से ज्यादा शायद कोई नहीं कमाता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में अभी तो इतना पैसा भी नहीं है क्रिकेट में, और बात भी आज से 20 साल पहले। आप बेटो पढ़ोगे लिखोगे सब तुमको भी मिल जाएगा, यह ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने स्पेशली इनके लिए, अब मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूं शॉर्ट करके, वाकई बच्चे ने पढ़ और सीए बना और बड़ी बड़ी डिग्री आ ली और वह सारी चीजें आ गई। अब ये ह्यूमन नेचर का तरीका है ना कि कोई खराबी, कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटल में बीमारों की तकलीफ दिखाई और बताओ कि अगर तुम यही गलती करोगे, मसलन जैसे मैंने कहा छालिया खाओगे तो तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, घबरा गया, डर गया, छोड़ दी उसे, और अच्छी चीजें देखी, हमने कहा ठीक तुम भी अगर कोशिश करोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो फिर तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, और खेलकूद में टाइम गुजार दिया तो आखिर में तुम इससे बुरी हालत में भी होगे जिसमें आज मैं हूं। समझ में आ गया बच्चे की उसने पढ़ा, बहुत छोटा बच्चा भी नहीं है 2 साल का, और इतना बड़ा भी नहीं कि कंट्रोल से निकल जाए। ये सफर है मेराज का खुलासा, अल्लाह के रसूल जिस मेराज के सफर पे जा रहे हैं उन्हें गुनाहगारों का अजाब भी दिखाया जा रहा है और नेकोकारों की नेमतें भी दिखाई जा रही, पैगंबर को जन्नत में भी ले जाया गया। अच्छा पैगंबर के लिए ये सारी चीजें कोई नई चीजें, ये सारी चीजें बनी ही पैगंबर की आंखों के सामने, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले तो पैगंबर पैदा हुए, जन्नत जहन्नम सब, लेकिन जो वापिस आके बता रहे हैं जन्नत में मैंने ऐसे बाग देखे, ऐसे महल देखे, वो जन्नत का जो खाने काबा, ओरिजिनल काबा तो जन्नत में है ना, ये तो खाली उसका रिप्लिका, वह कौसर की नहर है और तस्नीम की नहर है और सलसबील की नहर है, और शुरू में पैगंबर ने गुनाहगारों का अजाब भी देखा। यही मेराज का सफर, कोई ख्वाब की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल वापिस आके बता रहे हैं। अबू जहल मजाक उड़ा रहा, मोमिन तो मजाक नहीं उड़ाएगा, कि जैसे ही मैं मेराज के सफर में फर्स्ट आसमान में एंटर हुआ मैंने देखा कि कुछ ऐसे गुनाहगार हैं जिनको जमीन पे लेटाकर उनके सरों पे पत्थर और पहाड़ गिरा गिरा के उनके सर को तोड़ा जा रहा, कोई एनेस्थेसिया दे के नहीं बल्कि बाकायदा पूरी तकलीफ, फिर सर दोबारा बन रहा। देखिए तकलीफ एक बार की हो तो आदमी बर्दाश्त कर, और दोबारा ये स्कल, ये हड्डियां, ये बोन तोड़ी जा रही है, मगज पिघल के बाहर निकल रहा है तकलीफ की हालत में। मैंने पूछा खुदाबंदा कौन लोग है, कहा ये तुम्हारे वो उम्मती है जो नमाजें कजा करते थे। अब चूंकि रिवायत बहुत मशहूर इसलिए मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ा, 23 सीन पैगंबर, इसके बाद क्या देखा, यही तो देखा ना कि यही लोहा आग पर इतना 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 गर्म किया गया कि मेल्ट होकर पानी बना और वो कुछ गुनाहगारों के कानों में डाला जा रहा। एक ड्रॉप अगर बहुत गर्म पानी का कान में चला जाए आदमी चीख उठता, कहा ये लोहे को बाकायदा मेल्ट करके कितना उसका टेम्परेचर होगा कानों में, वो तड़प तड़प के उछल रहा, पकड़ने वाले फरिश्ते मौजूद, खुदाबंदा ये कौन लोग है, कहा ये वो लोग हैं जो खैना यानी गाना सुनते हैं, म्यूजिक नहीं, म्यूजिक डिफरेंट चीज। फिर वो भी आपने रिवायत में सुना कि इससे आगे बढ़ा तो मुझे कुछ ऐसे मर्द और औरतें नजर आए जिन्हें चैम्बर ऑफ फायर, आग के कमरे में बंद किया गया था, बल्कि एक तरह समझिए कि आग का ड्रेस पहनाया गया था, आग जलती हुई, आग बर्निंग फायर। यहां तो मेरे किस्से जाता है ना कि आदमी की खाल जल जाए तो आग की तकलीफ भी नहीं होती है, वहां तो ये भी नहीं, और वो आग में तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, ये कौन है, कहा ये वो औरतें हैं जो अपना जिस्म नामहरम से नहीं छुपाती, यहां तो ऐसी भी होंगी जो अजाखाने में शहजादी को पुरसा देने आई होंगी और उसके बाद भी उनका ड्रेस ऐसा होगा। लेकिन देखिए असहाबे रसूल नॉलेज गेन करना चाहते हैं ना, तो फौरन कहा कि या रसूल अल्लाह तो ये तो औरतों का प्रॉब्लम है, तो आप तो फरमा रहे मैंने मर्दों को भी देखा, कहा ये वो मर्द हैं जो अपनी औरतों के इस अमल पे राजी हैं। बहुत से ऐसे मर्द बेचारे हैं जिनकी घर में कोई बात नहीं सुनता, सबसे ज्यादा उनकी बीवी मजाक उड़ाती, और ये कोई बड़ा इम्तिहान है, रसूलुल्लाह के साथ भी ये हो चुका। लेकिन जो राजी है अपनी बीवी के इस अमल पे, और फिर पैगंबर ने वो भी देखे थे नौजवान, ये जुमला याद रखेगा, कल की मजलिस के शुरू में बॉडी लैंग्वेज के हवाले से एक मैसेज आएगा, उसमें ये जुमला भी काम आएगा। अरब में, अरब डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर आमतौर पर दरख्त और पौधे ऐसे नहीं होते कि उसमें लीव्स हो, थॉर्न्स, ताकि वो पानी जो है ना वो कम से कम वो वाइब्रेट होके उड़े, पानी ना उड़ने पाए, उसको पानी की जरूरत कम पड़े। एक ऐसा दरख्त अरब में होता है, झाड़ी, जिसमें इतने कांटे होते हैं, थॉर्न्स, कि अगर खाली आप हल्के से हाथ फेरे, पूरा हाथ आपका स्किन उड़ जाएगी और खून निकलने लगे। ऐसे नौजवान देखे जिनकी आंखों में ये थॉर्नी बुशेस दाखिल किए जाए, वो तड़प तड़प, ये कौन लोग हैं? कहा ये वो नौजवान है जो नामहरम को प्लेजर और मजे की नियत से देखते, ये अल्लाह का रसूल अपनी आंख से देख के कह रहा। अबू जहल को भी पैगंबर की सच्चाई पे कोई शक नहीं है, क्या इस मोमिन को शक होगा? और फिर इसके बाद पैगंबर ने वो मंजर भी देखा, लोहे की चेन आग में इतनी गर्म की गई कि रेड हो गई, अब वो सर से पैर तक इस तरह से आदमी को पिन्हाई गई जैसे पहले जमाने के इजिप्शियन फिरौन की ममीज बनाते थे, पूरी ड्रेसिंग सर, पूरी लोहे की चेन जो आग से गर्म, गर्म लोहे को हाथ लगाए चीख उठेंगे आप। ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो शराब पीते थे, शराब में पूरा शरीर या पूरा जिस्म मजा लेता है ना। अब पैगंबर ये मंजर देख के आगे बढ़ रहे, वो जो मैंने मिसाल दी कि बच्चे ने देखा कि थ्रोट कैंसर की तकलीफ या किसी और कैंसर की तकलीफ, घबरा गए। पैगंबर ने ये मनाजिर देखे, या रसूल, या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? कहा तेरे उम्मती, ये गाना सुनता था, ये बेपर्दा औरत, ये नामहरम को प्लेजर या लस्ट की नियत से देखने वाला नौजवान, ये बेनमाजी, ये शराबी, और भी बहुत सारे गुनाहगार। आप हजरात पे इतना सन्नाटा छा गया, मजमे पे ऐसा साइलेंस आ गया कि मैंने कहा बस यहीं पे खत्म कर दो रिवायत। तो खुलासा ये सब देखा पैगंबर ने, रिजल्ट क्या निकला? और फिर कुछ नेक लोगों के सवाब को भी देखा पैगंबर ने, कहा कुछ लोग हैं फसल उगा रहे हैं, अभी एक फसल कटती नहीं है कि इससे ज्यादा बड़ी फसल आ जाती है, इतना 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 उनके पास गल्ला, पुराने जमाने की इकोनॉमी गल्ले पे चलती थी, डॉलर पे नहीं चलती थी। ये कौन लोग हैं? कहा राह खुदा में चैरिटी करने वाले हैं, अभी पहली चैरिटी का सवाब मिलता नहीं है कि नेक्स्ट चैरिटी का सवाब इनके पास आ जाता है, संभाले नहीं संभलता। खैर बातें बहुत ज्यादा ना हो जाए, यानी मजलिस कल वीक डे मुझे मालूम है, तो बात को मुख्तसर करो। अब पैगंबर ने जब ये सब कुछ देखा और पहुंचे पैगंबर वहां पे जहां सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के रसूल, फकान काबा कौसैन और अदना, कोई और नहीं, और ये सारे मनाजिर देख के आए, तो ह्यूमन नेचर क्या कहती? अपनी उम्मत की हालत देखकर आए, उम्मत का मतलब पैगंबर बाप है, उम्मत औलाद, हम अपनी तकलीफ फिर भी बर्दाश्त कर लेते, हमारा छोटा बच्चा जब तकलीफ में तड़पता है हमें ज्यादा दुख होता। जैसे ही पैगंबर वहां पे पहुंचे, तड़प के एक मरतबा खुदा ने कहा हबीब मेरे पास मेहमान बन के आए, क्या चाहिए? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कहा उम्मत के लिए मांग रहा हूं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना और अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला नज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना अंता मौलाना। ये सारी दुआ उम्मत के लिए, गुनाह माफ कर दे, खताएं माफ कर दे, गलतियां होती रहेंगी माफ कर दे, वो मनाजिर देख के आए हैं ना। अपने लिए पैगंबर नहीं कह रहे, जैसे मैंने कहा कि आपने कैंसर के मरीज को देखा, तड़प के कहा इतनी तकलीफ, कहा कि हाँ वो गलती नहीं करना वरना तुम भी ऐसे हो जाओगे। पैगंबर को ये मनाजिर इसलिए दिखाए गए कि रहमतुल लिल आलमीन अपनी उम्मत की तकलीफ देखकर एक मरतबा फरियाद करे, खुदा बंदा इनको माफ कर दे। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा हूं, जो तुमने नहीं मांगा वो भी दे रहा हूं, اور ان کے اس تمام عذاب اور گناہوں کی سزا کی معافی کے لیے علی ابن ابی طالب کی ولایت عطا کرتا ہوں، جو علی سے محبت کر لے گا اس کے ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ سارے عذاب کے مناظر دکھائے گئے تاکہ جب ولایت علی کا اعلان ہو تو سمجھ میں آئے کہ یہ ولایت علی ہمارے لیے، علی کے لیے نہیں، ہمارے لیے کتنی اہم اللہ کی نعمت بن رہی ہے۔ تبھی کا اتممت علیکم نعمتی، یہ سارا عذاب دیکھ کے پہلا سوال اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے علی کو مانو، اور کس طرح یہ پیغام بہت پہلے آیا اس کا۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا آخری جملہ یاد رکھیے گا، کل یا پرسوں دو دن کی مجلسوں میں سے کسی میں اس جملے کی وضاحت ہوگی، اور وہ کیا کہ یہ تو معراج کے سفر میں ولایت علی دی گئی نا، جو میرے مولا نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ لہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ مجھے، میں آیت اللہ کبریٰ ہوں، مجھے دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو آسمان پہ لے کے گیا تھا، یہ تو وہاں کی بات ہے نا۔ لیکن جس دن علی اس دنیا میں آئے تھے، عربوں مکے والوں، عربوں کو بھی چھوڑی، مکے والوں، بس بالکل آخری جملے، آج مجلس لمبی ہو گئی، مکے والوں میں بہت ساری ایسی برائیاں تھیں جو آج سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن سارا مکہ اس میں انوالو نہیں تھا۔ مثلا بنی ہاشم کا خاندان ان ساری خرابیوں سے الگ تھا۔ ایک ایگزامپل، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، بنی ہاشم بھی اسی مکے میں رہتا، یعنی خاندان رسالت، وہاں تو یہ سسٹم نہیں تھا۔ مکے والوں میں ایک اور چیز کا بہت رواج تھا جو کسی نہ کسی طرح عربوں میں آج تک ہے، آنر کلنگ والا مسئلہ۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ حلال کی اولاد ہے کہ حرام کی اولاد، یہ مکے میں اسلام سے پہلے بھی ایک مسئلہ چلتا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کرائٹیریا رکھا تھا، اور کرائٹیریا یہ رکھا تھا کہ مکے کے باہر پہاڑی پہاڑ، پورا مکہ شہر پہاڑوں پہ تھا، ایک پہاڑ میں بہت بڑا اژدہا رہتا تھا۔ اب یہ ان کا عقیدہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ بعض نان مسلم ممالک میں، بعض نان مسلم مذاہب میں سانپ کی بھی پوجا ہوتی، اژدہے کی بھی پوجا ہوتی، اسے بھی خدا مانا جاتا۔ تو اب یہ مکے کے بھی کافی قبیلے، ناٹ بنی ہاشم، وہ اژدہا، اس کا ان کے پاس یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی اولاد حرام کی ہے، کون سی اولاد حلال کی، اور جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کے پاس لے جا کے رکھ دیتے، اگر وہ اس کو کھا لے تو کہا اچھا ہوا، یہ حلال حرام کی اولاد ہوگی، اور اگر کچھ نہ کہے تو کہا یہ بچہ حلال کی اولاد۔ بنی ہاشم ایسے نان سینس باتوں میں انوالو ہو سکتا ہے، لیکن عرب کے لوگ ٹرائی ضرور کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن امریکہ میں کتنے نوجوانوں سے پوچھی، جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کے فرینڈ سرکل نے ان کو شراب پلانا چاہیے، ایک بار پی کے تو دیکھ لو، انہوں نے منع کی۔ اب ایسا نہیں کہ منع کر دیا، نیکسٹ فنکشن میں پھر کہا ایک بار تو ٹرائی کر کے دیکھ لو، پھر اگلے فنکشن میں کہا ایک بار تو ٹرائی کر کے دیکھ لو، آخر ٹرائی کرتے ہیں، ایسے ٹرائی کرتے ہیں کہ پھر اسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو گناہ میں انوالو کرنے کا یا نیکی میں انوالو کرنے کا، بھئی ایک بار تو آ جاؤ فلاں ذاکر کی مجلس میں بہت مزہ آئے گا، کہ میں نہیں جاتا، آج اگلے سال پھر آ جائے، ایک بار آ جائے بڑا مزہ آ گیا، وہ خود ہی آنے لگتا۔ تو اب یہ قریش کے سارے قبیلے اس پہ عمل کرتے تھے بنی ہاشم کے علاوہ، لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بنی ہاشم میں، وہ آ کے ٹرائی ضرور کرتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو بھیج دیجیے، ہمارے یہاں ایک ہمارا ایک رواج ہے، ایک ریت ہے، تو آپ بھی اسی مکے میں رہتے ہیں اس پہ عمل کر دیں، اور ہمیشہ منع کر دیا جاتا، لیکن وہ ٹرائی ضرور کرتے ہیں۔ آج علی پیدا ہو گئے، اب جو علی پیدا ہوئے پھر آئے وہ، اب ان کو نہیں پتا علی کون ہے، علی سے پہلے جعفر طیار بھی پیدا ہوئے تھے، عقیل بھی پیدا ہوئے تھے، طالب بھی، اور بنی ہاشم کے بچے، ہر دفعہ ان کو منع کیا گیا لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں۔ وہ آج پھر آ گئے اور کہا کہ بھائی یہ بچہ مبارک ہو، آئیے آج ہم ٹرائی کر لیں، چونکہ یہ بچہ ابو طالب کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے پیغمبر کے پاس تھا، تو آپ پیغمبر کے پاس آئے، باقی جو بچے پیدا ہوئے تھے ابو طالب کے تو ابو طالب کے پاس گئے تھے، ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو نکال دیا گیا۔ आज पैगंबर के पास आया, पैगंबर तो वैसे ही रहमतुल लिल आलमीन बहुत नर्म है, कहा अच्छा ले जाओ, चलो आज तुम्हारी खाई, लेके चले गए। अब लेके गए वहां पे और थोड़ी देर के बाद रोते हुए और सरों पे खाक उड़ाते हुए वापिस आ रहे हैं और अली को लाके पैगंबर के पास रखा। पैगंबर ने कहा तुम गए तो थे बड़े जोश में, इतने गमगीर क्यों? कहा कि अजीब बच्चे आपने हमारे हवाले कर दिया, इसको ले जाके हमने अजदहे के सामने रखा, बजाय इसके कि अजदहा कुछ करे, इसने एक दिन, तीन दिन का बच्चा, एक बार अंगड़ाई ली, अजदहे के कल्ले में हाथ डाला और एक बार अजदहे को चीर के उसके दो टुकड़े करके फेंक दिए। ये तो खैर जो हुआ सो हुआ, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, अब हम अपने बच्चों को कैसे चेक किया करेंगे? पैगंबर ने कहा कि अब कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब ये है मेयार, जो अली से मोहब्बत करेगा वो हलाल की औलाद होगा, जो अली से दुश्मनी करेगा वो हराम की औलाद। अली विलायत अली, मेराज में पैगाम मिला तुम्हारे हर गुनाहों को माफ करने वाली चीज, लेकिन उससे मेराज से 20 साल पहले विलादत के मौके पे पैगाम मिल गया कि तुम्हारी नस्लों की हिफाजत, तुम्हारी पाकिजगी, तुम्हारी तहारत वो इस अली के जरिए है। अली के जरिए हमारी औरतें, हमारे मर्द, हमारे बच्चे पाक व पाकीजा होते हैं तो खुद अली की अपनी औलाद कितनी पाक व पाकीजा होगी। तो आज तो तस्किरा भी उनका है जो अली के नवासे। मसाइब का वक्त कम रह गया है आज शबे जुमा की वजह से, अगरचे जाफरी सेंटर वालों ने बिल्कुल टाइम पे प्रोग्राम शुरू किया दुआए कुमैल के बावजूद, मजलिस बिल्कुल टाइम पर हो, लेकिन मेरा बयान कुछ ज्यादा लंबा हो गया। बहुत जल्दी से, कल से तो बड़ी रातें हैं आलम की और फिर अलातश का दिन। आज हमें करबला के उन शहीदों का मातम करना है जो इस एतबार से बाकी मातम से अलग है कि करबला के बाकी जितने शहीद हैं जो कल से बयान शुरू होगा या जो इससे पहले बयान हो चुका, उन पे उनके घर वालों ने भी मातम किया और अहले हरम ने भी मातम किया। लेकिन आज करबला का वो शहीद है कि जिसकी मां ने ना उसका खुद मातम किया और ना किसी और को मातम करने दिया। मैंने अपने लाल अपने भाई पे सदका कर दिया और जो चीज सदका कर दी जाए उसका पलट के जिक्र भी नहीं किया जाता। एक बात जहन में रखिए, जैनब को हुसैन से कितनी मोहब्बत और हुसैन की वजह से हुसैन की औलाद से कितनी मोहब्बत। जैनब अली अकबर का चेहरा देख के जीती थी, लेकिन क्या ये मोहब्बत वन वे या यकतरफा होगी? अरे जितनी मोहब्बत जैनब को हुसैन से है उतनी मोहब्बत हुसैन को भी जैनब से, और जितना जैनब हुसैन की औलाद से प्यार करती है उतना ही हुसैन जैनब की औलाद से प्यार करते हैं। अगर जैनब अली अकबर को देख के जीती है तो हुसैन और मोहम्मद को देख के खुश होते हैं। लेकिन करबला के ये अजीब शहीद, जैनब ने कह दिया था भैया तू भी इनका मातम ना कर, ना कोई और इनका मातम करे। 9-10 साल के वो बच्चे जिनकी मां ने भी उनका मातम नहीं किया, आज आपको उनका मातम करना। अच्छा, रिवायतों में यह है कि जैनब कुबरा के शौहर, यानी रिवायतों से मतलब मख्तल में, जैनब कुबरा के शौहर जाफर तैयार के बड़े बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उस वक्त बहुत बीमार थे और ज़ईफ हो चुके थे जब हुसैन मक्के से हज को छोड़कर कूफे की जानिब चले। चुनाचे हुसैन ने ओनो मोहम्मद को अलग से बुलाया और कहा कि तुम्हें अपने बाप की खिदमत करना है, बीमार भी है ज़ईफ भी, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, बाप की खिदमत करो। अच्छा, ओनो मोहम्मद को भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला, एक आम सफर समझ रहे हैं तो बाप की खिदमत के लिए रोक दिया है तो बात समझ में भी आती है, रुक। और हुसैनी काफिला मक्के से चला। अभी मजलिस के आखिरी हिस्से में आया था कि मक्के के चारों तरफ पहाड़, तब हुसैनी काफिला पहाड़ों की तरफ जा रहा है, पहाड़ चढ़ के मक्के से निकले। मगर हुसैन को खाने काबा से इतनी मोहब्बत है कि सवारी आगे जा रही है। हुसैन गर्दन घुमा के उस वक्त तक काबे को देखते रहे जब तक काबे की एक झलक नजर आती है। आज काबे का जिक्र भी आया था ना तकरीर। और ये काफिला चले, अरब में एक काफिला 28 मील जाने के बाद फिर कयाम करता है, रात हो जाती है। लेकिन ये काफिला अभी 5 मील दूर गया। अल्लाह आप में से जिन जिन को मक्के ले गया है उनको याद होगा वहां पे एक मस्जिद है आयशा, और जो लोग अभी नहीं गए तो इंशाल्लाह जाएंगे तो वहां एक मस्जिद है आयशा। ये वो इलाका जो काबे से 5 मील है वहां की ये तारीख। जैसे काफिला वहां पहुंचा, हुसैन ने आवाज दी, अब्बास काफिले को रोक लो। अब्बास का काम वजह पूछना नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, हुसैन का हुक्म है, काफिला रोक ली। कहा अब्बास मेरा खेमा लगाओ, सवारी बिठा के मैं खेमे में जा रहा हूं। अब्बास ने खेमा लगाया, हुसैन अपने खेमे में गए, अब्बास हाथ जोड़ के अंदर आ गए। कहा मौला ये भी बताइए कि बाकी सवारियां ये इन सबको भी क्या बिठा के खेमे लगाए जाए। अब्बास हैरान तो हैं कि 5 मील के बाद तो कभी भी काफिला नहीं रोका जाता है, आज क्यों रोका गया। लेकिन जो अब्बास जो सवाल कर ले वो अब्बास नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि बाकी खेमे। कहा नहीं अब्बास, बहुत थोड़ी देर के लिए मैं यहां रुका हूं, सैदानियों को महमिलों में बैठा रहे। और देखो अब्बास फौरन बाहर जाओ, मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करके इज्जत और एहतराम के साथ लाओ। अब्बास बाहर निकले तो कोई नया आदमी तो था नहीं, ज़ैनब कुबरा के शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, खानदान के बुजुर्ग सबसे बड़े, वो आ रहे हैं और आनो मोहम्मद को लेके आ रहे हैं। हुसैन के खेमे में आए, पहले तो सलाम किया, फिर कहा कि हुसैन तू कूफे जा रहा और मैंने तेरे बाबा का जमाना देखा है और मुझे पता है कूफा क्या, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तेरी पेशानी के बाल पकड़ के तुझे यहीं रोक लेता, कूफे तो न जाने देता, लेकिन मुझे पता है तू इमाम मासूम है, हुक्म खुदा से हर अमल करता है, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि एक मरतबा अपनी बीवी ज़ैनब कुबरा से बात करना। हुसैन मुस्कुराए, जानते थे तभी तो काफिला रोका। कहा क्या है अब्दुल्ला, ज़ैनब की सवारी बाहर है, पहली ही महमिल ज़ैनब की है, जाइए। वहां ज़ैनब को खबर मिल गई, मेरा शौहर आया। दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है मुझे वापस ले जाने आया हूं, और अगर शौहर मना कर दे तो बीवी सफर पे नहीं जा सकती, मेरा शौहर मुझे मेरे भाई से जुदा करने तो नहीं आया। ज़ैनब के दिल में यह ख्याल आ रहा है, चुना थी। जैसे ही अब्दुल्ला करीब आए, महमिल पे हाथ रखा, पहले तो सलाम होता है ना, सलाम किया, सलाम अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी मेरा सलाम लीजिए। ज़ैनब ने जवाब सलाम तो दिया, वो वाजिब है, वालैका सलाम यबना अम्मी, चचा के बेटे मेरा जवाब सलाम ले। लेकिन वो जो ख्याल दिल में था ना, घबरा के कहा अगर मुझे वापस ले जाने आया है तो ज़ैनब मना नहीं कर सकती, हुक्म खुदा है, मगर ज़ैनब नहीं जाएगी, ज़ैनब का लाशा जाएगा, ज़ैनब की मैयत जाएगी, भाई से अलग होके ज़ैनब जिंदा नहीं रह सकेगी। अब मैं कहता हूं शहजादी, अभी तो खाली आपने सोचा कि शायद मैं भाई से अलग हो रही, तो तड़प के कहा कि मैं मर जाऊंगी। और जब करबला में असरे आशूर हुसैन ने आकर कहा था, ज़ैनब बहना मेरा आखिरी सलाम लो, आज 55 साल का साथ छूट रहा है, शहजादे आप पे क्या कयामत गुजरी हो। मेरा एक जुमला याद रखिए, शाम गरीमा के मसाइब में आएगा, यकीनन उस वक्त भी ज़ैनब मर जाती, मगर हुसैन के एक जुमले ने ज़ैनब को जिंदा रखा, वो जुमला शाम गरीमा पढ़ूंगा। खैर अब्दुल्ला जैसे ही शहजादी का जुमला सुना, ज़ैनब कहती है अगर मुझे ले जाने आए हो मैं मना नहीं कर सकती, अब्दुल्ला का सारा जिस्म कांप उठा। कहा शहजादी भला मेरी ये मजाल, मैं ये गुस्ताखी करूं कि आपको कोई हुक्म दूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं तो इसलिए आया हूं कि हमारे और आपके दोनों के जद रसूलुल्लाह ने कहा जब मुश्किलात के सफर में जाओ तो सदके का सामान लेके जाना। मुझे पता है ये सफर कितना मुश्किल है, मैं कूफे वालों का जानता हूं, मैं तो सदके का सामान लाया हूं, और क्या है सामान है सदका, आन को आगे बढ़ाया, अगर मेरे आका पे परेशानी आए इसे अपनी जानिब से सदका कर देना, मोहम्मद को आगे बढ़ाया और परेशानी और बड़ी हो तो इसे मेरी जानिब से सदका। हाय आज उन शहजादों का तस्किरा है जिन्हें सदके का सामान उनके बाप ने भी करार दिया और उनकी माँ ने भी, میں صاحب کو مختصر کرتا ہوں کہ حسین کربلا پہنچی, دو محرم سے شب عاشور آ گئی. شب عاشور حسین نے دو عمل خاص طور پہ کیے, عبادت تو کی ہی, پہلے مغرب کی نماز کے فوراً بعد مردوں کی ایک میٹنگ بلائی جس میں چراغ گل ہوا, وہ سنا ہے آپ نے. اور آدھی رات کے بعد اب حسین نے خواتین کے خیموں کو دیکھنا شروع کیا, مردوں کا امتحان ہو گیا نا, اب عورتوں کو دیکھنا ہے کہ عورتوں کا جذبہ کیا. اللہ آپ کو کربلا جب بھی لے جائے خیمہ گاہ تو آپ ضرور جاتے ہیں نا, یہ زینب کا خیمہ ہے, یہ سجاد کا خیمہ ہے, یہ ام فروا کا خیمہ ہے, وہی خیمہ گاہ. آدھی رات کے بعد حسین خیموں کو دیکھتے چلے, ہر خیمے ہر بیوی کل کی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے اور خوشی کے عالم میں. رونا صرف ایک خیمے میں تھا جو میں الاتش کے دن پڑھوں گا, رباب اور اصغر کا خیمہ, ہر خیمے, لیکن خاص زینب کے خیمے میں تو عجیب منظر. زینب نے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا اور کہہ رہی ہیں بیٹا آن, بیٹا محمد, تمہیں تو پتہ ہی ہے تم جعفر تیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو, لیکن خبردار کل میدان میں نہ کہنا کہ ہم جعفر تیار کے پوتے, یہ مت کہنا حیدر کرار کے نواسے, ایسا جہاد کرنا کہ یزید کا لشکر پکار اٹھے کہ یہ بچے نہیں آئے ہیں جعفر تیار آ گئے ہیں, یہ بچے نہیں آئے ہیں خیبر میں حیدر کرار آ گئے ہیں. اور دیکھو مجھے یقین حیدر کرار کے نواسے ہو, مجھے یقین اس سے بڑا بھی لشکر ہو تو تم سب کو شکست دے کے فرات پہ قبضہ کر لو گے, مگر ایک وعدہ کرو ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی. جب فرات پہ قبضہ کر لینا تو بہت پیاسے ہو گے, مگر اصغر سے پہلے پانی نہ پینا, ایسا نہ ہو پیاس کی وجہ سے پانی پی لو اور میرا اصغر پیاسا رہ جائے. اور اگلا دن آیا, صبح سے شہادتیں شروع ہوئی, ایک ایک کر کے اصحاب امام مارے گئے, شہزادوں کی باری آئی. اور جب کبھی کسی کا لاشا آتا اور آن محمد لاشے کے ساتھ آتے ہیں, ایک مرتبہ زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا تم اب تک زندہ ہو, بیٹا تم اب تک زندہ ہو, یہ مارا گیا وہ مارا گیا. اور آخر میں ایک منزل آتی ہے, اب جو آن محمد خیمے میں آئے, زینب کبرا نے بچوں کو دیکھا ناراضگی سے منہ پھیر لیا. آن محمد گھبرا گئے, اما تو ہم سے ناراض لگ رہی. کہا کہ میں ناراض نہ ہوں, اولاد عقیل ماری گئی, اولاد مسلم ماری گئی, ایک ایک کر کے سارے میرے بابا کی اولادیں ماری جا رہی ہیں, تو اب تک زندہ, بیٹا آن زندہ کیسے, بیٹا محمد زندہ کیسے. بچوں نے ننے ننے ہاتھ جوڑ دی, اما کسی سے بھی پوچھ لے. ہر مرتبہ دوڑ کے ماموں کے پاس جاتے ہیں, ماموں ہمیں تو مقتل میں جانے دیں. اور ماموں کہہ دیتے کہ نہیں, تم میری بہن زینب کی نشانی ہو, میں تمہیں مقتل میں نہیں جانے دے سکتا. ماموں سے اجازت دلوا دے, پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے. زینب چلی. اور ایک مرتبہ, چونکہ یہاں واقعہ جناب قاسم کے واقعے سے سملر ہو گیا تو مختصر کرتا ہوں, اور پہنچی اور کہا حسین زینب کی ایک خواہش ہے, میرے بچوں کو میدان میں بھیجا جائے. حسین نے کہا زینب تم خود آئی ہو, چلو میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں, آن محمد تیار ہو جا. زینب نے کہا اس طرح نہیں, روک دیا. اس خیمے میں گئے جہاں سامان تھا, دو امامے لے کے آتی, یہ امامے حسین کو دیتی اور کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر تیار کا ہے, اپنے ہاتھ سے اون کو پہنا دے, اور ایک امامہ تو تو پہچانتا ہے ان کے نانا حیدر کرار کا ہے, اپنے ہاتھ سے محمد کو پہنا دے. چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, جعفر تیار بن کے جائیں گے, حیدر کرار بن کے جائیں گے. اور واقعا 9-10 سال کے بچے میدان میں گئے اور ایسا جہاد کیا, ایسا جہاد کیا, 30,000 کا لشکر یزید یہ کہہ کے بھاگنے لگا ارے یہ بچے نہیں ہیں, یہ حیدر کرار خدا گئے. عمر سعد نے پکار کے کہا بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو, اگر یہ ساتھ ساتھ رہے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. فوج درمیان میں آئی, بچے زخموں سے چور چور, گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام قبول کرو. ایک بار حسین و عباس دوڑ کے آئے, یہ لاشیں اٹھائے اور یہ لاشیں خیمے میں لا رہے. ہر مجاہد کے گھوڑے سے گرتے ہی لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگتے تھے, ادھر خوشی کے شادیانے بجتے تھے, ادھر خیمے میں بیویاں ماتم شروع کر دیتی تھیں, मगर यहाँ आनो मोहम्मद गिरे, हुसैन और अब्बास ने लाशें उठाए, खुशी के शादियाने बचे, और उधर सैदानियों ने मातम शुरू करना चाहा, जैनब ने रोक दिया, जैनब ने रोक दिया। और जो जुमला कहा मिर्जा दबीर ने एक बैत में इस तरह बयान किया, बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, बीबियों मातम ना करो। और एक बार बच्चे लाए गए जैनब के करीब, हुसैन ने बच्चे रखे, आन मर चुका था, मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा था, हुसैन ने कहा जैनब मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी करके इनको भेजा था, अब तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। जब से ये बच्चे करबला आए हैं तूने इन्हें गले से भी नहीं लगाया है, एक बार इन्हें गले से लगा ले। बहरहाल जैनब माँ है, माँ है, माँ है, झुकी, ऑन को गले से लगाया वो मर चुका है, फिर मोहम्मद को गले से लगाया, आखिरी सांसें ले रहा है, आँख खोल के देखा मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया, कहा सिर्फ इतना बता दे माँ अब तो हमसे राजी हो गई है ना, अब तो हमसे खुश हो गई है ना, हमने तेरे दूध का हक अदा कर दिया। अजरकुम अल्लाह परवरदिगारा है दर करार के नवासो, और ज़ैनब कुबरा की औलाद के इन मसाइब का वास्ता, जो लोग आज के मजलिस में गिरिया कर रहे हैं इस गिरिए के वसीले में इन्हें ख़मे हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। मैदान करबला के मसाइब का वास्ता, शब जुमा का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता, इन साहिबान ईमान की सारी हाजतें पूरी फरमा, मरहूमीन को बुलंद दर्जात अता फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन,
अरे तैयार अलविदा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार अलविदा अलविदा अलविदा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार अलविदा। बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, रन को सिदारो आओ न मोहम्मद ये मानिसार, ऐ दिलबरान जाफर तैयार अलविदा अलविदा अलविदा, ऐ दिलबरान जाफर तैयार अलविदा 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 अलविदा। जाफर का इक्तसार बढ़ाना जिहाद में, जाफर का इक्तसार बढ़ाना जिहाद में, नाना की अपनी शान दिखाना जिहाद में, ऐ दिलबरान जाफर तैयार दिलबरान जाफर तैयार अलविदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेरे खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, मैदान में जाओ फतह में अब कुछ न देर हो, ऐ दिलबरान जाफर तैयार दिलबरान जाफर तैयार गिरे रहे सिपाह मगर मुँह न मोड़ना, रहे सिपाह मगर मुँह न मोड़ना, हैदर की यादगार हो मैदान छोड़ना, ऐ दिलबरान जाफर तैयार अलविदा अलविदा अलविदा। जान जाफर तैयार। के सर जो उतारो तो खुश हूँ मैं, सिमरो उमर के सर जो उतारो तो खुश हूँ मैं। दुश्मन को झूम झूम के मारो तो खुश हूँ मैं, ऐ दिल बरान जाफर तैयार।
अलविदा 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 अलविदा
बरान जाफर तैयार। मामू को जहमत न दीजियो, लाशे उठाए भाई तो जुम्बिश न कीजियो, ऐ दिल बरान जाफर तैयार। ऐ दिल बरान जाफर तैयार। आरजू थी जवा होंगे मेरे लाल, शादी रचाऊं ये गलत था मेरा ख्याल, ऐ दिल बराने जाफर तैयार।
तारीख के किरदारों किस बात में तुम कम हो, ऐ शह के अजादारो किस बात में तुम कम हो,
ऐ शह के अजादारो किस बात में तुम कम हो।
तारीख के किरदारो किस बात में तुम कम हो, ऐ शह के अजादारो किस बात में तुम कम हो। दरिया हो समंदर हो तुम शीर के गौहर हो, तुम मर्ज कलंदर हो सहरा में गुलेतर हो, तुम मज में अबूजर हो तुम फिक्र के कंबर हो, तुम हुर का कबीला हो तुम जौन का लश्कर हो, है गम के अलमदार हो किस बात में तुम रास्ता नहीं मंजिल हो, धड़कन नहीं तुम दिल हो, मजलूम के तुम हामी हर जुल्म के कातिल हो, इंसान की अजमत के हर गांव में शामिल हो, जुल्मत के समंदर में तुम नूर का साहिल हो, ऐ गम के तलबगारो किस बात में तुम कम हो,
ऐ शह के अजादारो किस बात।
निस्बत है पैगंबर से निस्बत तुम्हें हैदर से, इस निस्बत मौला से तुम दूर रहे सर से, तुम आँख मिलाते हो हर वक्त सितमगर से, जो दर से मिला तुमको सलमान अबू जर से, तुम रूप वही धारो किस बात में तुम नब की रिदा तुमसे करती है सवाल, ऐसा किस गम में बहाते हो आंखों से लहू अपना, क्या घर में तुम्हारे भी पैगाम मेरा पहुंचा, जिस दीन के लाशे को काम आया मेरा पर्दा, लाज उसकी रखो देखो किस बात में तुम
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार।
अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह।